नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ बहुत दिनों के बाद वापस आने के लिए। तो दोस्तों, ये सिलसिला अब ऐसे ही चलेगा, तो शुरुआत करते हैं हमारी रोमांचक कहानियों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज एक नए किस्से की तरफ। आज हम बात करेंगे एक मर्डर नाइट की। जी हाँ दोस्तों, मर्डर नाइट की। तो चलिए इसका पार्ट वन बताने जा रही हूँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये बात 3 जनवरी 2020 की है, दिन 2020 राइट। अनिरुद्ध मर्डर केस के मर्डर ने अपना मुंह खोला क्या? इंस्पेक्टर नागेश ने थाने में आते ही हवलदार संजय से पूछा। हवलदार संजय ने उसे सैल्यूट किया लेकिन कुछ कहा नहीं। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? नागेश ने उसे घूर कर देखते हुए पूछा। सर, वो बताना तो चाहता है, उससे रात को पूछताछ की गई पर उसका कहना है कि वो सिर्फ आपको ही बताएगा, हवलदार ने इंस्पेक्टर नागेश के कान में आकर कहा। ऐसा क्या, पर मैं ही क्यों? नागेश ने उससे पूछा। सर, ये तो पता नहीं, लेकिन शायद वो आपको जानता है या शायद आप उसको जानते हैं, संजय ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, तब तक तुम वो केस की फाइल और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में बताओ। कल शाम को ही मुझे इस केस को सौंपा है और मैं इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी चाहता हूँ, नागेश ने कहा। जी सर, संजय ने कहा। और संजय, ये मुझे सर सर कहना बंद करो, तुम मेरे स्कूल के टाइम से दोस्त हो, ये सर सर सुनना अच्छा नहीं लगता। माना कि मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पर हूँ, लेकिन अरे नागेश यार, सुन लिया कर, यहाँ तू मेरा दोस्त नहीं, संजय ने हंसते हुए कहा। नागेश हंसने लगा और कहा, हाँ ये अच्छा लगा, पर दूसरों के सामने ध्यान रखना। जी सर, संजय ने फिर से उसी तरह बात करना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, वो फाइल लाओ, उसे देख लूँ और फिर उस मर्डर के आरोपी से भी बात कर लूँ, नागेश ने मुस्कुरा कर कहा। नागेश अनिरुद्ध मर्डर केस के में अनिरुद्ध की हत्या के आरोपी राजू के सामने बैठा था। अनिरुद्ध की हत्या परसों रात यानी 1-2 जनवरी की रात 2:30 बजे हुई, जिसकी हत्या के आरोप में राजू को अनिरुद्ध की पत्नी दीक्षा ने रंगे हाथ पकड़ा और उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। पुलिस को फ़ोन किया तब पुलिस ने आकर राजू को अनिरुद्ध के कमरे में उसकी लाश के पास बैठा हुआ पाया और उसे उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अनिरुद्ध ने गले पर कपड़े से बांध कर गला दबा कर मारने के सबूत मिले हैं। मरने से पहले कातिल के साथ थोड़ी हाथापाई भी हुई थी, इससे भी सबूत मिले। कत्ल के आरोपी के इससे 50,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिससे पहली नज़र में देखने पर पता चलता है कि कत्ल पैसों की चोरी और उसे बचाने के लिए किया गया है। देखो, जो मैंने फाइल में पढ़ा उससे तो पहली बार देखने पर तुम ही कातिल साबित हो रहे हो, लेकिन संजय ने मुझे बताया कि तुम केवल मुझे ही सब बताना चाह रहे हो, तो अब बताओ क्या बात है और केवल मुझे ही क्यों बताना चाह रहे हो, नागेश ने राजू की आंखों में आंखें डालकर पूछा। राजू ने कहा, साहब आप शायद भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। एक बार चोरी के केस में आपने मुझे पकड़ा था, लेकिन जब मेरे चोट लग गई थी तब आपने अस्पताल मेरा इलाज करवाया, मुझे आपने अपने पैसों से खाना भी खिलाया था। तब से आपके लिए दिल में इज्जत है और विश्वास है कि आप मेरी बात को सही मानोगे, नागेश ने उसे ध्यान से देखा और उसे सारी बातें याद आ गईं। कुछ देर सोचकर नागेश ने कहा, देखो उस समय जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, उस वक्त तुम चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे और शायद वो तुम्हारी मजबूरी रही होगी, क्योंकि तुम दुकान से खाने की चीज़ चुराकर भागे थे, लेकिन इस बार तुम मर्डर केस में पकड़े गए हो, इसलिए इस पर मुझे दया की उम्मीद मत करना। साहब, मैं दया की उम्मीद भी नहीं कर रहा, लेकिन आप कम से कम मेरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं और मैं आपको सारी बातें विश्वास के साथ बता सकता हूँ, राजू ने नागेश की कुर्सी के पास सरकते हुए कहा। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, नागेश ने पूछा। साहब, मुझे लगता है कि अनिरुद्ध साहब को मारने के पीछे बहुत गहरी साजिश है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं और पुलिस के लोग भी इसमें मिले हुए हैं, और कल जो यहाँ तुमसे पूछताछ करने आया था उसे तो मैंने एक दो बार अनिरुद्ध साहब के घर पर देखा है, इसलिए आपको ही बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कौन है वो, नागेश ने मन ही मन में कहा। हाँ ये सब छोड़ो, पहले मुझे वो बताओ जो तुम बताना चाहते हो, तुमने मर्डर क्यों किया, क्यों कैसे किया? अरे साहब ये क्या बोल रहे हो, मैंने मर्डर नहीं किया, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ बस। अनिरुद्ध साहब का मर्डर करके मुझे क्या मिलेगा? तुमने ही अनिरुद्ध को कुछ महीनों पहले धमकी दी थी कि तुम उसे देख लोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि तुम नौकरी ज़रूर करते थे लेकिन तुम्हारी चोरी की आदत छूट नहीं रही थी। साहब ये सब सच है, लेकिन आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, राजू ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ ठीक है, चलो बताओ क्या बताना चाहते हो। उस दिन कितने बजे, कब, कैसे तुम अनिरुद्ध के घर क्यों गए? पंकज ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें उसकी बातों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राजू ने बताना शुरू किया। 1 जनवरी 2020 रात 11:45 बजे, उस रात मैं अनिरुद्ध मेंशन के पीछे दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाज़ा बंद था। तब मैंने अपनी रस्सी को छत की तरफ फेंका और जल्दी से छत पर चढ़ गया, क्योंकि मैं एक चोर हूँ और किसी बड़े घर में घुसने के लिए मेरा हमेशा का काम था। घर की छत से मैं सीढ़ियों की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाजे को धक्का देकर देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। लगता है आज किस्मत साथ है, वरना बहुत सारा टाइम तो दरवाज़ा काटने में ही लग जाता है, मैंने खुद से कहा। उसके बाद मैं बहुत धीरे धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरा। पूरे घर में छोटे छोटे बल्बों का उजाला था, बहुत ही मध्यम रोशनी थी, लेकिन मेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात थी। अपना काम करने के लिए मुझे बहुत ही कम रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने सीढ़ियों के पास बने कमरे के दरवाजे को हल्के हाथ से धक्का दिया, पर उसमें अंदर से लॉक लगा था। बिल्कुल हल्के कदमों से मैं आगे की तरफ बढ़ा, तभी मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आती सुनाई दी। कैसी आवाज़, क्या और क्या सुना तुमने, नागेश ने पूछा। साहब मैंने सुनने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, राजू ने कहा। आगे क्या हुआ ये बताओ, नागेश ने कहा। राजू ने फिर से बताना शुरू किया। उसके बाद मैं अगले कमरे की तरफ गया, पर उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। मैं सोचने लगा ये कमरा तो साफ का था, आज इसमें ताला लगा है, और जिसमें ताला लगा रहता था वो अंदर से बंद है, इसका क्या मतलब है? और मैंने तो सोचा था कि आज साहब घर में अकेले हैं तो चोरी करना आसान रहेगा, क्योंकि साहब को शराब पीने की बहुत गहरी की नींद आती है और वो बैंड बाजों की आवाज़ में भी नहीं उठते हैं। उसके बाद तो मैं एक और कमरे की तरफ गया, उसमें बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने हल्के से उस कुंडी को खोला, अंदर देखा, पर उस कमरे में कबाड़ रखा हुआ था। क्या मेरे जाने के बाद पूरे घर को ही बदल दिया? अब कैसे पता लगाऊं कि कौन से कमरे में तिजोरी रखी हुई है, मैंने मन में सोचा। तभी मुझे रसोई नजर आई जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे प्यास लग रही थी इसलिए मैं जल्दी से उस तरफ भाग गया और फ्रिज खोलकर देखा, उसमें एक से बढ़कर एक खाने की चीज़ें रखी हुई थी। मेरा मन होने लगा कि मैं उसमें से कुछ खा लूँ। वैसे भी ऐसे खाने की चीज़ें मुझे रोज़ नहीं मिलती और उस शाम को तो मैंने बस दो समोसे ही खाए थे, इसलिए उस वक्त मेरे दिमाग में चोरी का विचार निकल गया और पेट पूजा करने का विचार हावी हो गया। जल्दी से मैंने आइसक्रीम, रसगुल्ले, खीर बाहर निकाली और दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे बैठकर खाने लगा। ताकि अचानक से जब कोई आ भी जाए तो मुझे भागने का मौका मिल जाए। वैसे तो मुझे पता था कि साहब को रात में जागने की आदत ही है नहीं और मालकिन आज अपने मायके गई हुई थी। नौकरों को आज साहब ने छुट्टी दे दी थी और वो आज घर पर अकेले थे, ये बात मुझे पता लग गई थी, इसलिए मैंने उसी दिन घर में चोरी का प्लान बनाया था। अच्छा फिर तूने चोरी के साथ मर्डर भी कर दिया, नागेश ने पूछा। अरे नहीं साहब ऐसा नहीं है, राजू ने चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए कहा। हाँ मान लेते हैं नहीं किया, अब आगे बता नागेश, नागेश ने कहा। 2 जनवरी 2020 रात 12:15 बजे, साहब उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से खीर खाने लगा। तभी अचानक मुझे लगा कि रसोई के दरवाजे के सामने से कोई साया गुजरा। एक पल के लिए तो मैं सहम गया। खीर मेरे गले में नहीं उतरी, लेकिन कुछ समय तक जब कुछ नहीं हुआ तब मैंने दरवाजे के नीचे की जगह से झांक कर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तब मैंने चैन की सांस ली। शायद कोई बिल्ली होगी, मैंने खुद को समझाया और फिर से खाने लगा। खीर, आइसक्रीम और रसगुल्ला खाकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैंने सारे बर्तन सिंक में रख दिए और पानी पीते हुए सोचने लगा, साहब ऐसे तो अच्छे हैं कि, लेकिन मुझे एक छोटी सी गलती पर नौकरी से निकाल कर उन्होंने अच्छा नहीं किया। अब इतना अच्छा खाने के बाद तो चोरी करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन साहब ने इतनी बेइज्जती की, उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे फिर से लगा कि कोई रसोई के दरवाजे के पास से गुजरा है। मैंने जल्दी से रसोई के दरवाजे के हॉल से देखा। मैंने देखा कि एक काले कपड़ों में कोई आदमी रसोई की तरफ आ रहा है। मेरा कलेजा धक धक कांपने लगा। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे लगे पर्दे के अंदर छुप गया। उस आदमी ने रसोई का दरवाज़ा खोला और पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ आया। मैंने देखा कि वो मेरे मालिक नहीं है। उसका शरीर और इस इंसान के शरीर में कद में बहुत अंतर था। तुमने उसका चेहरा देखा, राकेश ने कहा। नहीं साहब, छोटे बल्ब की मध्यम रोशनी में किसका चेहरा दिखाई देता है। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाता, अचानक से लाइट चली गई। फिर क्या हुआ, नागेश ने पूछा। दोस्तों, आज का किस्सा पार्ट वन इतना ही। मर्डर नाइट, इसके बाद क्या हुआ, वहाँ क्या चला, ये जानने के लिए दूसरे पार्ट का इंतज़ार कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे, बहुत जल्दी लेकर आऊँगी दूसरा भाग और जानेंगे कि उस रात को एग्जैक्टली क्या हुआ। चलती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपका दिन शुभ रहे।